ओम शांति। आज इस सुंदर ईश्वर के दरबार में रूहानियत के रौनक फैलाते हुए बाप दादा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार तीनों का संगम मूर्ति राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी उपस्थित है। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी का जैसा नाम है वैसा ही उनका जीवन है। नाम है गीता। कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्बुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। फल की इच्छा न रख कर्म करते जाओ। और दूसरी बात है, अपनी स्थिति को सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय में समान रखो। श्रीमद् भगवत गीता की यही दो मुख्य संदेश जो है वह गीता दीदी की जीवन परिचय है। 1969 में आप 14 वर्ष की कोमल आयु में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी अत्यंत मेधावी विद्यार्थी रहे। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव आपने प्राप्त किया, परंतु ईश्वरी विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि 1972 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही आपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। गुजरात के अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात लगातार 14 वर्ष तक भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। 1993 से आप ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में सेवा दे रहे हैं। साथ ही साथ आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर को ऑर्डिनेटर है। आप विश्वविद्यालय के निमित्त राजयोगी विद्यार्थी भाई बहनों और ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के भी प्रभावी शिक्षिका है। आप एक कुशल राजयोग एवं सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनर है। मुख्यालय में विभिन्न विंग्स के जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें भी अनेक विषयों पर आप व्याख्यान देते हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इनर वर्ल्ड एंड आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, सक्सेस ए न्यू डायमेंशन, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, हार्मनी एंड रिलेशनशिप, लीडरशिप एटीट्यूड एंड पावर्स आदि अनेक अनेक विषयों पर व्याख्यान करते हैं। आपके द्वारा लिखे गए लेख अखबारों, पत्रिकाओं में छपे रहे हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण, संस्कार एवं आस्था चैनल में आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। भारत तथा विदेश में अनेक आध्यात्मिक मेलों, राजयोग शिविर, पदयात्रा, कॉन्फ्रेंस में कुशल संचलन भी किया और अमूल्य वक्ता भी बना। जैसे इंग्लिश में कहावत है, ए ट्रू सर्विस माइंडेड मैन हैज नो लिमिटेशन, नो बॉन्डेज। ऐसे सच्ची सेवादारी गीता दीदी जी हर क्षेत्र, हर देश, हर तरह की सेवा करते हुए विश्व कल्याणी बन इस ब्राह्मणों की सभा में सफलता के सितारे बन चमक रही है। आदरणीय गीता दीदी को इस सभा के बीच में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम दर्शनीय मूर्ति का दर्शन करेंगे, ज्ञान मूर्ति से ज्ञान सुनेंगे, वरदानी मूर्ति से झोली भरेंगे, गुण मूर्ति से संतुष्ट होंगे। अभी हम सुनेंगे गीता दीदी की अनमोल महावाक्य। विषय है विकर्माजीत से कर्मातीत अवस्था। विकर्माजीत से कर्मातीत अवस्था अभी हम सुनेंगे गीता दीदी से। ऑप्शन
ओम शांति। इस वर्ष की बाबा की सीजन का ये पहला ग्रुप है। आप सबका बाबा के बेहद घर में हार्दिक स्वागत है। सीजन की गाड़ी आपसे शुरू हो रही है। बाबा पिछले वर्ष हमें पढ़ा करके गए और काफी कुछ होमवर्क भी हम सबको दिया था। अवश्य ही आप सबको याद होगा और 6 मास की मार्जिन जो मिली उसमें उस होमवर्क को कंप्लीट भी किया होगा। अब बाबा फिर से आएंगे और उनके सामने आप सभी होंगे। बाबा हमारी स्थिति से देख लेंगे कि हमने कहां तक पढ़ाई की, प्रैक्टिकल में होमवर्क कितना किया। और बाबा तो पढ़ाई को आगे ही बढ़ाएंगे। कुछ बातें अंडरलाइन कराते हुए समय भी आगे बढ़ेगा, बाबा की पढ़ाई भी आगे बढ़ेगी। हमें उसके साथ साथ अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। हम सभी सृष्टि कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हैं। कर्म का सिद्धांत हम सबको लागू होता है। हम जानते हैं जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वो कर्मिक अकाउंट के आधार पर ही प्राप्त होता है। जमा कितना है और माइनस का खाता कितना है। कर्म सिद्धांत ही न्याय है। ये एक बहुत बड़ी ड्रामा में व्यवस्था है कि भगवान को और कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन इस कर्म क्षेत्र का जो कर्म का सिद्धांत है वो हरेक आत्मा को न्याय देता है। बाबा से जो कुछ हमें प्राप्त करना है वो भी कर्म बल से ही हम प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य, हम सबको पता है कि कर्म की कलम से ही भाग्य की रेखाओं को जितना लंबी करना चाहे हम कर सकते हैं। बाबा हमें कर्म की गति का ज्ञान देता है। ड्रामा के इस संसार चक्र के जो भी अनादि नियम है, सिद्धांत है, वो अपने आप ही अपना काम करते हैं। लेकिन भगवान इसलिए उनसे भी ऊपर सर्वोपरि हैं, क्योंकि वो हमें इन सिद्धांतों का सही ज्ञान देता है। पुरुषार्थ हमें ही करना है। हम सत्कर्म कैसे करें, किए हुए सत्कर्म जमा कैसे हों, वो ज्ञान बाबा हमें देते हैं। किए हुए विकर्म भस्म कैसे हों और नए और विकर्म ना हों, उनकी भी समझ और विधि बाबा हमें सिखाते हैं। पर कौन से कर्म मुझे करने हैं, अपने कर्म को मुझे सत बनाना है या पाप बनाना है, वो डिसीजन, वो निर्णय तो हम आत्माओं के हाथ में हैं। जैसे एक खेत में किसान बीज बोता है, उसे पानी, खाद, धूप देने की व्यवस्था करता है, कोई जंगली जानवर उससे खा न जाए, वो सेफ्टी भी वो बनाता है। लेकिन बीज से अंकुरित होना, पौधा या वृक्ष बनना, वो बीज का अपना कार्य है। बाबा भी हमारी बुद्धि रूपी धरणी में सद्ज्ञान का बीज बोता है, रोज बोता है, उसकी पालना भी बाबा करते हैं, रोज रोज समझाते हैं, प्यार देते हैं, अपना संग और साथ देते हैं, हिम्मत करते हैं, मदद करते हैं, शक्ति भरते हैं। और इस ईश्वरीय परिवार से जोड़कर, यज्ञ रचकर हमें सेफ्टी का संग भी देते हैं, माया से भी हमें सावधान करते हैं। अब उस ज्ञान को गुणों में बदलना, ज्ञान से आचरण को श्रेष्ठ बनाना, उसे संस्कार का रूप देना, स्थिति और स्वरूप बनाना, ये हमारा कार्य है। ये हमारा कार्य है। और वो हम कहां तक करते हैं, वो हम हरेक अपने आप को जानते हैं। ये भी हम जानते हैं कि एक है मनसा में बात आना, चाहे ज्ञान के चिंतन के रूप में, मनन के रूप में, या मायावी तूफान के रूप में, वो मनसा तक है। बाबा कहते हैं वो पानी में लकीर के समान है, मनसा तक वो बातें आई और गई। दूसरा है कि जो बातें मन में आई वो हमने मुख से बताई, चाहे ज्ञानदान का कार्य किया, अच्छी बात की, शुभ बोल बोले, सही मार्गदर्शन दिया, सही सलाह दी, या मुख से गलत बोला, मिसगाइड किया, उकसाया गलत बातों के लिए, अपशब्द बोले, कड़वे बोल बोले, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाचा में आ सकता है। वो जैसे रेत में लकीर के समान है कि वो चिन्ह बनता जरूर है, पर जो चीज कर्म में आई, अच्छी ज्ञान की बातें कर्म में आई, श्रेष्ठ कर्म बना, या माया का तूफान कर्मेंद्रिय से पाप कराया, संग दोष में आकर, वातावरण दोष में आकर, गलत कर्म में हम उलझ गए, तो बाबा कहते हैं वो पत्थर पर लकीर के समान है जो एक ठोस हिसाब बन जाता है। और जो चीज कर्म में आ गई उसका फल तो हमें मिलता ही है, न ड्रामा माफ कर सकता है, न भगवान माफ कर सकता है। जो चीज कर्म में आ गई वो हिसाब हमें चुकाने ही होते हैं, इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हर कर्म श्रेष्ठ बने वही पुरुषार्थ हमें करना है। मतलब बाबा से भगवान देने आया है और भक्ति काल से ही हम जानते हैं कि जब वो देता है छप्पर फाड़ के देता है, पर जब देता है माना संगम युग में आकर देता है, दुनिया समय नहीं जानती। हम जानते हैं कि भगवान जब देता है वो यही समय है देने का, और वो बेहद का देता है। भगवान के आदेश पर समय की पुकार अनुसार दो चीज है, ड्रामा और बाबा। समय की पुकार क्या है, समय क्या है, कौन सा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, कलयुग से सतयुग की ओर जाने का। तो समय की पुकार क्या है? इस परिवर्तन की वेला के समय भगवान के आदेश पर वो जो चाहते हैं ऐसा हम करते हैं तो हम बेहद की प्राप्ति कर लेते हैं। और यही समय अगर हमने भगवान की श्रीमत को ध्यान में न रख, मनमत परमत के वश कुछ भी गलत कर्म का बीज बो लिया, तो ये भी हम जानते हैं कि उसका भी अनेक गुना गलत फल हमें मिलता है। ये सीजन है श्रेष्ठ कर्म का बीज बोया, अनेक गुना श्रेष्ठ फल। और इस सीजन में अगर हम केयरलेस रहे, गलत कर्म का बीज बोया, अनेक गुना गलत फल, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, ये भी हम सब जानते हैं कि द्वापर युग से लेकर कलयुगंत तक 63 जन्मों का उधार हमारे सिर पर है। कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था, विकर्मों के बोझ के कारण ज्ञान की धारणा नहीं होती। कल ही बाबा ने कहा, क्योंकि द्वापर युग से लेकर हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, हरेक कर्म देहभान में कर आकर करते हैं, इसलिए उतरती कला ही होती है। भल श्रेष्ठ और सत्कर्म नहीं होते हैं, भल अच्छे कर्म होते हैं पर देहभान की स्थिति में होते हैं, इसलिए दान पुण्य करते हुए भी उतरती कला ही होती है। तो 63 जन्मों का उधार, माइनस का खाता, विकर्मों का हिसाब अभी हमें चुकाना है। और 21 जन्मों के लिए हमें जमा करना है। ये दो काम अभी हम कर सकते, अभी हमें करना है। 63 जन्मों का उधार चुकाना और 21 जन्मों के लिए जमा करना, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग की प्रारब्ध सत कर्मों के जमा करने से होगा। सत कर्म का फल अगर अभी खा लिया तो वो प्रारब्ध में से भी माइनस है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय संगम का यह, भगवान का मार्गदर्शन और हमारे कर्म, ये तीन चीज अभी बहुत महत्वपूर्ण है। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ संस्कार के रूप में आत्मा में भरा हुआ है और भोगना के रूप में फल भी साथ साथ चखते रहते हैं। और इस तरफ 21 जन्मों के लिए जो जमा करना है उन सत्कर्मों जो हम कर रहे हैं संगम युग में, उसके फल स्वरूप भी नाम मान शान महिमा प्राप्तियां ये सब भी हो रहा है। बात है वो चुकाना और ये जमा करना। इसलिए और समय है, ये दोनों कार्य करके हम आत्माओं को कर्मातीत स्थिति पाकर वापस घर जाने। कर्मातीत स्थिति माना ये नहीं है कर्म से अतीत, कर्म से अतीत इस कर्म क्षेत्र पर हम कोई नहीं हो सकते, पर कर्मातीत स्थिति का अर्थ ही ये है कि कर्म फल से अतीत। विकर्म के फल को भोगने में भी आत्मा अतीत न्यारी रह सके, माना वो मेरी स्थिति को प्रभावित न करे, और सत्कर्मों का जो फल अभी मिलता है उसमें भी आत्मा न्यारी स्थिति में रह सके। विकर्मा जीत पहले बनना होगा, उसके बाद कर्मातीत स्थिति पर हम जा सकेंगे। पहला पुरुषार्थ विकर्मा जीत बनेगा। जैसे दुनिया वालों को हम समझाते हैं कि जन्म मरण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, हां विकर्मों से विकल्पों से मुक्त हो सकती है आत्मा। इसलिए हमारा पहला पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ से वो संयम कंट्रोलिंग पावर हम आत्माओं में आ जाए कि हम विकर्मा जीत बन सके, माना नए कोई पाप ना हो, नए कोई पाप कर्म अब संगम युग में ना हो, वो है विकर्मा जीत। एक व्याख्या। उसके लिए तीन पुरुषार्थ बाबा ने हमें बताए हैं कि एक तो जन्म जन्मांतर से किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप आत्मा में रिकॉर्ड हुए विकारी संस्कार वृत्तियां जो दृष्टि संकल्प और व्यवहार के रूप में प्रत्यक्ष होते रहते हैं, कर्म में आता रहता है। तो किए हुए विकर्मों का हिसाब चुकाना एक पुरुषार्थ, नए कोई विकर्म अब ना हो उसका पुरुषार्थ, और इस जन्म में आज तक जो कर्म हुए हैं उसका हिसाब। तो बाबा ने एक तो हमें कह दिया है कि इस जन्म में, क्योंकि और जन्मों का तो अब हमें पता नहीं है, पर इस जन्म में बाबा कहते हैं ना, 3 वर्ष की आयु से लेकर व्यक्ति को अपने कर्मों का पता रहता है। तो इस जन्म के कर्मों का सच्चाई से बाबा को हिसाब किताब बता देना, जिसके लिए मुरली में बाबा कई बार हमें कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी सच्चाई से बाबा को लिख करके दे दो, इससे पाप का खाता हल्का हो जाएगा, बाबा आधा माफ कर देंगे, हल्का हो जाएगा। ये भगवान की हमारे पर कृपा है और हमारी सच्चाई सफाई का, भगवान के साथ जो हमारी सच्चाई सफाई है उसका फल हमें मिलता है कि वो आधा माफ हो जाएगा। हमें याद है जब हम ज्ञान में आए 40-45 साल हुए, प्रारंभ में प्रति वर्ष 2-3 बार हमसे जीवन कहानी लिखाई जाती। अब तो परिवार बेहद का हो गया है, पर फिर भी हम बाबा को अपनी इस जीवन की पूरी कहानी, अब तो हमें ज्ञान है कि पाप किसे कहते हैं, उस हिसाब से जीवन में छोटे मोटे जो भी कोई भी विकार के वश जो भी पाप हमने किए हैं, अपने कर्मों की सच्ची जीवन कहानी बाबा को लिख करके दे देना, तब प्रैक्टिकली कहा जाएगा कि मैं बाबा का, तब बाबा मेरा। प्रैक्टिकली बाबा का, मैं बाबा का तब माना जाएगा जब मेरे जीवन की किताब बाबा के सामने खुली। तब मैं बाबा का और बाबा मेरा। जब तक हमने छिपाया है, माना हम उनके नहीं बने, हमें उन पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, और इसलिए वो पाप खाते रहते हैं, तब तक बुद्धियोग भारी रहता है। बाबा मिसाल देते हैं, सर्जन को अपनी पूरी बीमारी बताओ, तभी वो सही ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर सर्जन को हम सच्चाई से नहीं बताएंगे तो सही उपचार नहीं होगा। हम पूर्ण पवित्र नहीं बन सकेंगे, हम अपना नेचर क्योर नहीं कर सके। अगर मैंने सर्व संबंध बाबा से जोड़े हैं, बाबा ही मेरा सर्वस्व है, ये अगर मेरा बाबा से सौदा है, तो हमें ये काम जरूर करना है कि हम सच्चाई सफाई से अपनी पूरी जीवन कहानी बाबा को लिख कर बाबा के कमरे में बाबा से पत्र भंडारियां होती हैं, हम उसमें अपनी जीवन कहानी सच्चाई से लिख कर डाल दे। पहले तो ब्रह्मा बाबा को लिख कर देते थे, क्योंकि शिव बाबा से संबंध माना, आज ब्रह्मा से संबंध प्रैक्टिकल। दादियों को भी लिख कर हम देते थे, पर अब इतना बड़ा परिवार, अब एटलीस्ट हम बाबा को सच्चाई से लिख के बाबा के पत्र में डाल दें तो मन साफ साफ हल्का हो जाए, आधा माफ हो जाएगा। और बाबा को बता देना तो हमें बार बार याद रहेगा कि मैंने बाबा को बता दिया है, समर्पित कर दिया है, तो अब मुझे दोबारा फिर ऐसी भूले नहीं करती। एक पुरुषार्थ हम सबका ये जरूर होना चाहिए। और दूसरा कि अब नए कोई विकर्म ना हो, तो बाबा कहते हैं ना कि देह अभिमान सभी बुराइयों का मूल कारण है। जब हम देह भान में आते हैं, अब देह अभिमान किसको कहते हैं वो भी परख आपको होगी। एक है देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार। देह भान, शरीर का भान, ये स्त्री है ये पुरुष है, काला है गोरा है, युवा है बूढ़ा है, देह का एहसास होते रहना, इस सभानता में आना, रूप रंग आयु स्त्री पुरुष, ये देह भान। देह अभिमान अपनी सूक्ष्म योग्यताओं का अभिमान, वो देह अभिमान, उसमें मैंपन आ जाए, मैं ज्ञानी हूं दूसरा ज्ञानी है, मैं पुरुषार्थी हूं मैं योगी हूं, अपनी विशेषताओं का अभिमान। बाबा कहते हैं ना, विशेषता को प्रभु देन समझो, पर अपनी सूक्ष्म योग्यताओं का अभिमान, मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मेरी ये विशेषता है, ये देह अभिमान। और जीवन की स्थूल योग्यताएं या अचीवमेंट्स, प्राप्तियां उपलब्धियां, धन साधन जमीन जायदाद पोस्ट पोजीशन, इन सब का अभिमान दे अहंकार कहा जाता है। तो देह भान के वश बाबा कहते हैं, जब तुम देह भान में आते हो तब कर्म विकर्म होता है। इसलिए निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में हम रहेंगे तो नए पाप कर्म नहीं होंगे। यही कारण है संगम युग में जब से भगवान ने अवतरण किया तब से लेकर आज तक प्रतिदिन उसकी हर पढ़ाई में आत्माभिमानी स्थिति बनाने पर ही मुख्य जोर है। कैसे बनानी है वो चिंतन मुरली में बाबा सिखाते हैं। आत्माभिमानी बनने के लिए ब्रह्मा बाप ने क्या क्या किया जीवन कहानी हम सब जानते हैं। यह आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, बाबा कहते ना, तुम बाप को नहीं भूलते हो पर अपने आप को भूलते हो तब बाप भूल जाता है। बाप तो भक्ति में भी याद था, भगवान को याद करने का अभ्यास आधा कल्प से है, बल सही रूप से नहीं जानते थे पर भक्ति में भगवान को याद करने का अभ्यास था। पर अपने आप को भूले, देहभान में आए, वो आधा कल्प से हम भूले। चलो सतयुग त्रेता में नेचुरल आत्माभिमानी, इसलिए जब हम स्व में स्थित नहीं हैं, अपना स्वरूप, अपना स्थिति गुण, हमारा असली स्वरूप, इस स्मृति स्थिति में अनुभूति में रहना और उस अनुसार कर्म में आना, वो देही अभिमानी स्थिति है। केवल स्मृति, मैं आत्मा हूं, शक्ति हूं, देह से न्यारी हूं, वो देही अभिमानी बनने के लिए एक पुरुषार्थ हमारा है, चिंतन का, दृष्टि का, आत्मदृष्टि का, वो एक पुरुषार्थ है। पर आत्माभिमानी स्थिति माना, आत्मस्मृति, आत्मदृष्टि और आत्मा के ओरिजिनल गुणों का स्वरूप बनकर कर्म कर, तो नए पाप कर्म नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा और संपूर्ण आत्माभिमानी बनने के लिए ही हम उस निराकार बाप को याद करते, क्योंकि निराकार की याद ही हमें आत्माभिमानी बना सकती। देहधारी वो देवात्मा है, धर्मात्मा है, महात्मा है, योगी है, कोई भी है, देहधारी की याद देहभान में लाते हैं। निराकार बाबा की याद ही हमें निराकारी बनाती है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर हम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारा और बाबा की याद, तो कर्म यथार्थ होगा, विकर्म नहीं होगा। बाबा कहते हैं ये पहला पुरुषार्थ। जैसे दुनिया में कोई पाप कर्म करता है, समाज के, सरकार के, मानव जीवन के लिए जो सिद्धांत नियम बने हैं व्यवस्था के हिसाब से भी, उसके विपरीत जो कर्म करते हैं उसे गलत कर्म कहा जाता है और उसको पहली सजा कि उसको पकड़कर जेल में बंद करते हैं, ताकि जिसके संग में, जिस समाज के वातावरण में रहकर उसने भूल की, गलत काम किया, उनसे उनको अलग कर देते हैं ताकि और ज्यादा वो कर्म न करे ऐसा। तो बाबा भी पहली सजा कहो, शिक्षा कहो, पुरुषार्थ कहो, वो यही सिखाते हैं कि जिस देह के भान में आकर, जिस देहधारियों को मेरा मेरा समझकर हमने भूले की, पाप किया, बाबा पहला पुरुषार्थ, पहली सजा, पहली शिक्षा यही देते हैं कि उनके आकर्षण, उनकी आसक्ति से अलग देही अभिमानी बन जाओ, ताकि नहीं भूले और ना। जिस देह भान में आकर, देह संबंधों को मेरा मेरा समझकर हमने भूले की, बाबा उससे हमें डिटैच करता है कि तुम देह से अलग, देह अलग है तुम अलग, देह संबंध, देह की दुनिया, दैहिक भौतिक पदार्थ, कर्मेंद्रिया, इन सब से तुम अलग, डिटैच हो जा। तो नई भूलें नहीं होंगी, नए पाप नहीं होंगे। और तीसरा पुरुषार्थ कि किए हुए पाप कर्मों से बने विकारी संस्कार, जो फिर हमें पाप करने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। हम कहते हैं ना, आदत ऐसी पड़ी है, स्वभाव ऐसा है, वश हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं, फिर वो कर बैठते हैं। उन विकर्मों का, विकारी संस्कारों का हिसाब चुकाने के लिए बाबा कहते हैं ना, शक्तिशाली योग चाहिए, तपस्या चाहिए, ताकि जितना बाबा की याद से हम अपने अंदर सत्यता, पवित्रता की शक्ति भरते जाएंगे, वो संस्कार धीरे 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 डाइल्यूट होते होते फिर खत्म हो जाएंगे। पर वो जिगरी पुरुषार्थ, क्या अब ये संस्कार मुझे बदलने, बाबा की जिगरी याद, रियलाइजेशन के साथ कि मुझे पूर्ण शुद्ध बनना है, पूर्ण पवित्र बनना है, कोई संस्कार मेरे में न रहे अशुद्ध, तो बाबा जिसको कहते हैं ना ज्वालामुखी याद, शक्तिशाली याद, योग भट्ठी माना पावरफुल याद की स्थिति, तो किए हुए विकर्मों का हिसाब वो खत्म होगा। और ये हम खुद महसूस करेंगे, जितना हमारा ये जिगरी पुरुषार्थ होगा, हम महसूस करेंगे कि वो संस्कार बदलते जा रहे हैं। पहले उसका प्रभाव कितना था, कितने वर्ष होते थे, और धीरे 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 ये खत्म होते हैं। ये तीन पुरुषार्थ विकर्मा जीत स्थिति का, और उसके लिए दूसरी ओर सत्कर्म करना और वो जमा हो कि श्रीमत पर जो भी कर्म हम करते हैं आत्मभिमानी स्थिति से बाबा की श्रीमत पर। और श्रीमत क्या है, हरेक को मुरली से पता चलता है। बाबा की साकार अव्यक्त मुरलियां, भगवान की श्रीमत क्या है, और ब्रह्मा की भी प्रैक्टिकल राय क्या है, वो मुरली से हमें पता चलता है। बेशक हमारी दादियां दीदियां दादाएं हमारे बड़े हमें मार्गदर्शन देते हैं, पर इतने बड़े परिवार में मिलना भी मुश्किल है, तो मुरली तो हमारे सामने है ही। उसमें से हमें श्रीमत किसको कहते हैं वो पता चल। तो जितना हम सत्कर्म करने के पुरुषार्थ में और सेवा में बिजी रहते हैं, हम अपना समय संकल्प अपनी योग्यता विशेषता अपने धन साधन समय इन सब को सफल कर सकते हैं। पर सत्कर्म जमा हो, एक है सत्कर्म करना, तन मन धन मन वचन कर्म गुण कला शक्ति योग्यता विशेषता संबंध संपर्क समय ये सफल करना, और दूसरा है जमा हो। ईश्वरीय सेवा में ईश्वरीय कार्य में श्रीमत अनुसार के कर्मों में हम इन सबको लगाते हैं तो वो सफल होता है। पर जमा तब होता है जब हम निमित्त भाव से करते हैं। निर्माणता करने के बाद भी निर्माणता रखते हैं, सफल किया पर उसका रिटर्न मैपन आया, इच्छाएं हुई, तो बाबा कहते हैं उसमें से फल खा लिया तो वो माइनस। निमित्त भाव कराने वाला बाबा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। मुझे बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, मेरी नहीं। मुझे बाबा के गीत गाने हैं, मेरे नहीं। मुझे बाबा के बच्चे तैयार करने हैं, मेरे नहीं। हा? बाबा को प्रत्यक्ष करते करते बीच में हम अपने आप को प्रत्यक्ष करने लग जाते, अपनी महिमा गाने लगते। तो निमित्त भाव करने के बाद निर्माण भाव, निर्मल वाणी निर्मल व्यवहार, तो वो जमा होते हैं। तो सत्कर्म करें और करने में निमित्त भाव, मैंने उसका भी फल न खाएं, जमा रखें, तो हम कर्मातीत स्थिति की तरफ जा सकते हैं। कर्मातीत स्थिति जिन भी दादियों की देखी और बाबा ने वर्णन की है, उसमें ये दोनों चीज दिखाई दी कि विकर्मों के हिसाब चुकाने में भी न्यारापन रहा, भोगना की अनुभूति नहीं हुई, और सत्कर्मों में भी निमित्त भाव उनका रहा, मैंपन और मेरापन नहीं आया, तो कर्मातीत स्थिति को वे पा सके। और हमें वो ही फॉलो करना है, क्योंकि बाबा जैसा बनना संपूर्ण कर्मातीत, यही हम सबका लक्ष्य है। प्रैक्टिकल कर्म हमारे जितने यथार्थ, उतनी प्रारब्ध, उतनी स्थिति, उतना भाग्य, उतनी प्राप्तियां ऑटोमेटिक है। इसलिए कहते हैं ना, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, कर्म ही सबूत है हमारी महानता है। इसलिए बाबा कहते हैं चलन और चेहरा, और पूरा संगम युग हमारा इस प्रकार रहा होगा तो ऑटोमेटिक हमारी आध्यात्मिक पर्सनालिटी बनेगी, हमारा अस्तित्व, हमारी उपस्थिति ही सेवा करेगी, बल भरेगी, प्रेरणा देगी, हम बन सकेंगे। मतलब और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि संगम युग भी अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है, बहुत थोड़ी सी मार्जिन है हमें ठोस रूप से कर्म व्यवहार में अपने आप को बदलने की। इस साकार जगत के कर्म सही होंगे तभी हम सूक्ष्म जगत फरिश्ता स्वरूप में जा सकेंगे। अगर साकार ब्राह्मण जीवन के कर्म ठीक नहीं, हम फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ये थोड़ा सा टाइम हम सबके पास है अपने आप को बाबा जैसा बनाने के लिए, तो हम सब मिलकर, ये संध्या का समय है, अभ्यास करते हैं बहुत अच्छी रीति से। तो सभी अपना व्यवस्थित बैठ जाएं, अपना डायरी, पर्स, बैग, फाइल बाजू में रख दीजिए। बिल्कुल साइलेंस में और आसपास जो भी लोग हैं, परिस्थितियां हैं, सबसे डिटैच हो जाएं और बिल्कुल शांति से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बिल्कुल शांत, सबसे डिटैच, स्व में एकाग्र, हम 5 अभ्यास करेंगे। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए। अपने वास्तविक असली शुद्ध सत्य चैतन्य स्वरूप में केंद्रित हो जाए। मैं वो ही चैतन्य शक्ति, दिव्य ज्योति, बिंदु आत्मा, राइट साइड घूम जाइए। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास, स्वमान में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा, ऑलमाइटी शिव बाबा की संतान, मास्टर ऑलमाइटी, स्वमान का स्विच ऑन करते ही देहभान का अंधकार समाप्त हो जाता है। मैं बार बार महसूस कर रही हूं मैं विशेष महान आत्मा, वर्ल्ड ड्रामा की हीरो एक्टर, भगवान की मददगार, राइट साइड घूम जाइए। तीसरा अभ्यास। स्वशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट, जो सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, जीवन में मैंने धारण की है, उसमें दृढ़, शक्तिशाली, अचल, अडोल, एकरस, श्रेष्ठ संगम युगी जीवन का अब और कोई विकल्प नहीं, राइट साइड घूम जाइए, बाप समान बनना, जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं को और रिफाइन करना और क्वालिटी बनाना, ऊंचाई ले आना, ब्रह्मा बाप समान बनना, आमूल परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन, राइट साइड घूम जाइए,
संपन्न और संपूर्ण बनकर बाबा की प्रत्यक्षता का माध्यम बनना, बाबा के साथ वापस घर चल, असली घर में असली स्थिति में असली पिता के पास जाना, बैठ जाए। स्वयं में स्थित रहना, बाबा में मगन हो जाना, मेरा बाबा, आत्मानंद और परमानंद में मगन रहना, बाबा की याद में प्यार में मगन हो जाना, प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाना, इससे ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। दाता की संतान, मास्टर दाता बनना, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया, भरपूर किया, मुझे भी विश्व की सभी आत्माओं को प्रकृति को सबको देना है। विकर्मा चित बनने से मैं स्वयं से फारिग हो जाती हूँ। सत्कर्मी बनने से विश्व कल्याणी बन जाती हूँ। कर्मातीत बनने से बाबा का कार्य संपन्न कर सकती